मेरा नहीं ख्याल है कि अब हॉकी जो है ना वो कभी अपने पैरों पे आके खड़ी होगी।
केसेस है उनके नैब के हाथों में, सारा कुछ है, पता नहीं क्यों गवर्नमेंट सोई हुई है।
लेकिन कभी भी माइंड नहीं है क्योंकि मैं उसको 12-13 साल से जानता हूँ।
ओलंपियंस अगर खेलें तो चैंपियंस, लेकिन फेडरेशन में आए तो हॉकी तबाह, ऐसा क्यों? और सरफराज अहमद की डांट डपट सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी को? खेल के मैदान से अब्दुलरशीद शकूर का सलाम। पाकिस्तान की हॉकी ने जितना उरूज देखना था देख लिया, अब तो कदम कदम पर नाकामियां उसका मुकद्दर बनी हुई हैं, और नाकामियां भी ऐसी कि जिनके बारे में किसी ने शायद ही कभी सोचा हो। मसलन अपनी तारीख की बदतरीन शिकस्त का सामना कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने उस पर 2-4 नहीं बल्कि 9 गोल कर डाले, और क्या कोई ये सोच सकता था कि जापान की हॉकी टीम पाकिस्तान को 1-2 नहीं बल्कि 3 गोल करके हराएगी। मैंने 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की फाहते पाकिस्तानी हॉकी टीम के कप्तान मंजूर जूनियर से दुबई राबता किया और उनसे मेरा पहला सवाल था कि पाकिस्तानी हॉकी के जवाल के बुनियादी असबाब क्या हैं।
हम ओलंपियन ने इस बारे में कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान की हॉकी का जो मेयार है वो दिन ब दिन इस हाल पे आ जाएगा कि जो आज हम बांग्लादेश जैसी टीमें, श्रीलंका जैसी टीमों के साथ खेल के ड्रॉ करके खुशी महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो हॉकी है 2002 के बाद जो देखेंगे उसमें राणा मुजाहिद भी है, आसफ बाजवा भी है, और अभी ये 4 साल शहबाज सीनियर को भी हो गए हैं। आप ये पूरा पीरियड देख लेंगे, 17 साल देख लें, 17 साल में पाकिस्तान की हॉकी कभी आपको उस जगह पे नज़र नहीं आई जहाँ पे आनी चाहिए थी। इन ओलंपियन ने तो हॉकी का बेड़ा गर्क कर दिया है, इन्होंने तो हॉकी की वो जो साख है वो उसका जो तबाही फेरी हॉकी की, इन्होंने सिर्फ अपनी यारी दोस्तियां और फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेने के लिए सारे काम किए हैं। इन्होंने पाकिस्तान हॉकी के लिए 20 करोड़ आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। आप ये देखें 17 साल में 4-5-6 बंदों के दरमियान ये हॉकी घूम रही है, वही राणा मुजाहिद, वही आसफ बाजवा, शहबाज, हसन सरदार।
मंजूर जूनियर से मैंने पूछा कि साबिक ओलंपियंस की एक बड़ी तादाद फेडरेशन पर तनकीद करती है, लेकिन जब उन्हें फेडरेशन में शामिल कर लिया जाता है तो वो खामोश हो जाते हैं।
जो फॉर्मर ओलंपियंस हैं उन्होंने अपने ओलंपियन होने की जो कीमत है बड़ी कम डाली है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जब उनके पास कोई ओहदा नहीं होता तो वो तरह तरह की सजेशन देते हैं कि ऐसे करें जी, ये करें जी, वो करें जी, बेड़ा गर्क कर दिया हॉकी का। और हॉकी का बेड़ा गर्क करने वाले वही लोग हैं जो तनकीद करते हैं, बाद में फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेने के लिए टीम के साथ एसोसिएट हो जाते हैं या चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बन जाते हैं या सिलेक्टर बन जाते हैं या कोच बन जाते हैं या टीम का हिस्सा बन जाते हैं, और उसके बाद जब उनको साइड पर कर दिया जाता है तो फिर कहते जी कि हॉकी की इंतज़ामिया, हॉकी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन के लोग हैं, ये प्रोफेशनल नहीं है, फलाना नहीं है, ढमकाना नहीं है। मेरी अगर इनके साथ नहीं बन पा रही तो उसकी वजूहत ये है कि हम इनकी पॉलिसियों से, इनकी तौर तरीके से हम इत्तेफाक नहीं करते, इसलिए तो हम इनके पास ऐसा नहीं है। हमें भी कहते हैं जी ना, आपको ये बना देंगे, डायरेक्टर ले लेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ले लेंगे जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ले लेंगे। तो भाई जब आपने मन मर्जियाँ अपनी करनी है, अपने असूल चलाने हैं, तो हमें गंदा क्यों करना चाह रहे हैं? तो ये तो हमारा ओलंपियन का हाल है कि अगर हम औरतों के ऊपर अपनी जुबान बंदी करेंगे तो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो कैसे संवरेगा।
मंजूर जूनियर से मेरा आखिरी सवाल था कि क्या ये उम्मीद रखी जाए कि पाकिस्तानी हॉकी दोबारा कामयाबी की तरफ सफर कर सकेगी या किस्सा तमाम।
आप ये कह लें कि इस वक्त वेंटिलेटर पर लगी हुई हॉकी, पाकिस्तान की हॉकी जो है, मेरा नहीं ख्याल है कि अब हॉकी जो है ना वो कभी अपने पैरों पे आके खड़ी होगी, अपने पाँव पे खड़ी होगी। मुझे कोई दूर दूर तक कोई चीज नजर नहीं आ रही कि पाकिस्तान हॉकी अगले 5-6 साल, 8 साल, 10 साल में किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी होगी।
मैंने पाकिस्तानी हॉकी की इस बदतरीन सूरतेहाल पर एक और साबिक ओलंपियन मंजूरुल हसन से भी बात की और उनसे मेरा पहला सवाल यही था कि पाकिस्तानी हॉकी आज जिस मकाम पर आ गई है इसमें साबिक ओलंपियंस कितने जिम्मेदार हैं?
जो बंदे अभी मौजूदा सेटअप है क्या है, मतलब है कि आप उन बंदों को बैठा दिया जो एडमिनिस्ट्रेशन चलानी होती है ना, और हॉकी की बाजवा जिस तरह का हॉकी प्लेयर था वो सब दुनिया जानती है, मुजाहिद जिस तरह का हॉकी प्लेयर था सब जानती है, क्या उन्होंने हॉकी खेली, कितनी हॉकी खेली है, उनकी क्या सोच होगी।
मंजूरुल हसन से मैंने पूछा कि हर दौर में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को हुकूमतों की तरफ से पैसे मिलते रहे हैं, लेकिन साथ साथ करप्शन की तहकीकात की भी खबरें आती रहीं, तो आखिर इन पैसों का हिसाब क्यों नहीं दिया गया कि हॉकी के नाम पर मिलने वाली भारी रकम कहां जाती रही।
पेपरों में काम करते रहे, पैसा बनाते रहे, पैसा बना बना के चले गए हैं, अभी भी केसेस हैं उनके नैब के हाथों में, सारा कुछ है, पता नहीं क्यों गवर्नमेंट सोई हुई है, किसी के ऊपर एक्शन हुआ हो, कोई पूछने वाला हो, जो नैब में बैठे हुए हैं या जहां भी बैठे हुए हैं वो भी तो हमारे पाकिस्तान के बंदे हैं ना कहीं से रंग मिल जाता है उनका, जब रंग मिल जाता है तो वो ठीक है, परवाह नहीं करते किसी एक को पकड़ा होता, अकाउंटेबिलिटी हुई हो ना, कोई अकाउंटेबिलिटी है। सिंध गवर्नमेंट ने इनको जनाब 100 मिलियन रुपीज की ग्रांट इशू कर दी, अब बताए वो कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला, क्या है, किन के हाथों में जाएगा पैसा। हालत ये है कि जो बंदे पीएचएम में 30-30 साल से 20-20 साल से काम कर रहे हैं, किसी की 15,000 तनख्वाह है, किसी की 20,000 तनख्वाह है, उनको आज 9 तारीख अभी तक उनको पैसे नहीं दिए और खुद वहां जाके बैठ गए हैं, तो फिर ये कैसे काम चलेगा, कैसे ये हॉकी चलेगी।
पाकिस्तान की तरह भारत में भी फुटबॉल के मामलात अदालत तक जा पहुंचे हैं, जाहिर है इसके असरात खेल और खिलाड़ियों पर मुरतब होंगे। दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता।
अभी भारत अपनी मेजबानी में हुए फीफा अंडर 17 आलमी कप फुटबॉल टूर्नामेंट की कामयाबी का जश्न भी नहीं मना सका था कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले का असर इंडियन फुटबॉल फेडरेशन पर हथौड़े की तरह पड़ा। फैसले के मुताबिक इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल ने गैर वाजिब तरीके से फेडरेशन का इलेक्शन जीता, अब उन्हें दोबारा इलेक्शन कराने होंगे। हाई कोर्ट के इस कदम से भारत के तमाम घरेलू टूर्नामेंट पर असर पड़ा है, लेकिन उसके नतीजे क्या होंगे बता रहे हैं फुटबॉल एक्सपर्ट और कमेंटेटर नोवी कपाड़िया।
आई लीग और ISL ये साल तो अलग अलग होंगे, लेकिन अब AFC का भी हुक्म आ चुका है कि अगले साल तो एक ही लीग होना चाहिए, किस तरह होगा देखो, अभी तो सब कुछ रुक गया है क्योंकि कोर्ट का हुक्म आ गया है कि AIFF नहीं है अभी, तो वो टेम्परी कमेटी है जो याकूब कुरैशी साहब अध्यक्ष है उसके, तो अब वो नए इलेक्शन होंगे, नई कमेटी बनेगी, वही अब डिसाइड करेगा। ये तो दुख की बात है कि सारी प्रतियोगिता बंद ही हो गई है, ये साल तो डूरन भी नहीं होने वाला है, जो सबसे पुराना टूर्नामेंट था वो भी समाप्त हो गया है, आईसी शील्ड तो अंडर 19 हो गया, DCM के 20 साल हो गए समाप्त होते, रोवर्स के भी 17 साल हो गए समाप्त होते, संतोष ट्रॉफी भी अब एक मजाक के लिए ही होता है।
तो हाईकोर्ट ने साबिक इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी को इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का कामकाज देखने की जिम्मेदारी सौंपी। वैसे भी अगर हाई कोर्ट का फैसला ना भी आता तो भी इन दिनों भारत में फुटबॉल खेलना बेहद मुश्किल है, इसकी एक बड़ी वजह स्टेडियम का किराया बेहद महंगा होना है, साबिक ओलंपियन SS हकीम कहते हैं।
कोई स्टेट काम नहीं करता, एक का दुका कोई स्टेट करा तो करा, सिवाय बैंगलोर एसोसिएशन के, किसी स्टेट ऑफिस का अपना ग्राउंड नहीं है। अम्बेडकर स्टेडियम लेना तो 5,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, रोज के कहाँ से लाके देंगे आप।
दरअसल कभी दिल्ली का अम्बेडकर स्टेडियम डूरंड कप और दूसरे छोटे बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी से भरा रहता था, अब महंगा किराया होने से छोटे मोटे टूर्नामेंट तो दम ही तोड़ गए हैं। अंडर 17 फीफा आलमी कप होने से एक उम्मीद जागी थी कि भारत की सीनियर टीम को इसका फायदा होगा, लेकिन नोवी कपाड़िया के माने तो इसकी राह भी आसान नहीं।
स्टेडियम बहुत शानदार बने हैं तो हम फ्रेंडली मैच के लिए टीमों को बुला सकते हैं, वो तो बात है स्पष्ट, लेकिन वो कौन से देश आएंगे वो अलग बात है ना, अपनी टीम के भी तो कुछ स्टैंडिंग हो ना, कोई यूरोप का देश इतनी लंबी यात्रा करके सिर्फ एक सॉल्ट लेक स्टेडियम देखने तो कोई नहीं आएगा, ये क्रिकेट नहीं है, तो ये इतना आसानी से नहीं होने वाला है।
क्रिकेट के बाद अब भारत में फुटबॉल भी अदालत में चली गई है, देखना है क्या होता है।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद के बारे में कहा जाता है कि वो मैदान में बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और अपने खिलाड़ियों को खूब डांट डपट करते हैं। टीम के खिलाड़ी इमाद वसीम से सवाल था कि इस डांट डपट का खिलाड़ी बुरा तो नहीं मनाते।
मेरे भी करता है वो सबसे ज्यादा गुस्सा, लेकिन कभी भी माइंड नहीं किया क्योंकि मैं उसको 12-13 साल से जानता हूँ। वो जब अंदर जाता है तो पाकिस्तान के लिए जाता है, उसको पर्सनल प्राइड की कोई फिक्र नहीं होती, वो पाकिस्तान के लिए खेलता है। इवन वो फ्रेंचाइज क्रिकेट भी आप देखें, जो भी कैप्टनसी करता है वो इसी तरह करता है, और हम लोग को सारा पता है उसका, तो इसलिए कोई नई चीज़ नहीं है। जो दुनिया को नहीं पता उनके लिए नई चीज़ है, हमारे साथ भाइयों की तरह ऑफ द फील्ड भी और ऑन द फील्ड भी। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप गलत करोगे तो आपको डांटी पड़नी चाहिए, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो आप, तो आई थिंक ही इज़ द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू पाकिस्तान क्रिकेट।
इमाद वसीम से ये भी पूछा गया कि पाकिस्तानी टीम वनडे और T20 में एक जबरदस्त अंदाज से सामने आई है, इसकी बुनियादी वजह क्या है?
हमें पता है कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है, अब हमें पता है कि गेम को कैसे आगे लेके जाना, क्योंकि क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुकी है, इवन टेस्ट क्रिकेट भी फास्ट हो चुकी है। तो हम लिमिटेड ओवर्स में यही कोशिश कर रहे हैं कि विकेट टेकिंग बॉलर्स के साथ और अटैकिंग बैट्समैन के साथ जाएं, और अभी तक सक्सेसफुल हैं। और हमारा बड़ा जो जिसे कहते हैं कि हमारा बड़ा जो मेन इवेंट अभी आने वाला है, जो न्यूजीलैंड हम जाने वाले हैं, हमारा चैलेंज है बहुत बड़ा, और अगर हम वहाँ अच्छा करते हैं, जो कि आई एम वेरी होपफुल कि जिस तरह की हमारी टीम है, जिस तरह के लड़के हैं, आई थिंक ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना ज़बरदस्त हुआ है, तो सारा क्रेडिट पहले सबसे पहले मैनेजमेंट को, फिर कैप्टन को, जिस तरह वो लीड करता है, नेचुरल लीडर, जिस तरह सैफी टीम को लेके चलता है, लड़कों को लेके चलता है, और उसके बाद फिर प्लेयर्स, जिस तरह नए लड़के आए हैं, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, अपने लिए कोई नहीं खेल रहा, आप सबको पता है, जिस तरह 100% एफर्ट दे रहे हैं, जिस तरह दोस्त भाइयों की तरह हैं, तो आई थिंक बहुत पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और मैं काफ़ी अर्से से खेल रहा हूँ पाकिस्तान, इतना मज़ा मुझे ड्रेसिंग रूम में कहीं नहीं आया जितना भी इस टीम के साथ आ रहा है।
इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को इजाज़त दीजिए।